पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र ने रूही को साड़ी पहनाई, मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा, जबकि दिशा ने रूही को देखकर गुस्सा किया। इस अध्याय में दिशा रूही को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र रूही को अपनी पत्नी के रूप में बताता है। रूही को रुद्र के साथ देखकर दिशा को एहसास होता है कि रुद्र ने उसे ब्लैकमेल किया है। रूही को सिंगानिया विला में लाया जाता है, जहां परिवार रूही को दुल्हन के रूप में देखकर हैरान हो जाता है। परी और अर्जुन रुद्र की योजना पर बात करते हैं, जबकि प्रीता रूही के लिए रस्मों का सुझाव देती है। कामना रूही पर ताना मारती है, जिससे वो रोने लगती है। चैप्टर 85। अब आगे कामना की बातों को सुनकर रूही के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कामना जैसा जैसा बोलकर गई थी वैसा कुछ भी रूही बिल्कुल नहीं चाहती थी। वे तो रुद्र से शादी भी नहीं करना चाहती थी, ना ही वे यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन रुद्र की धमकी की वजह से उसे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। वरना रुद्र अगर उसे अभी यहाँ से जाने के लिए बोल देता तो वे बिना देरी किए या बिना एक पल कुछ भी सोचे यहाँ से चली जाती, क्योंकि उसे रुद्र के पावर और पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वे अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश थीं। वहीं रूही को रोता हुआ देख सबको कामना पर गुस्सा आता है। वहीं सुमन रूही के पास आ उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं, रूही बेटा, मुझे मालूम है जो जो बातें कामना दीदी तुम्हें बोलकर गई हैं वे बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन बेटा उन्होंने ये सब दिल से नहीं कहा होगा, तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाना। सुमन की बातों को सुनकर रूही कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी प्रीता बोली, रूही बेटा, एक काम कर, आज रात का खाना तू अपने हाथों से बना दे, इसकी तेरी शादी की रस्म भी पूरी हो जाएगी और हमें पता भी चल जाएगा कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। प्रीता की बात सुनकर रूही हाँ बोल देती है। वहीं परी अपनी दादी की बात सुनकर बोली, दादी, आप एक बार रूही के हाथ का खाना खाओगी ना तो बस खाती ही रह जाओगी, क्योंकि रूही के हाथों में सच में जादू है और मैं भी रूही के साथ किचन में जाती हूँ उसकी हेल्प करने। परी की बात सुनकर सुमन जी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तू वे भी रूही की हेल्प करेगी? तूने आज के पहले किचन में कदम भी रखा हुआ है या तुझे ये भी पता है कि चीनी और नमक का डब्बा कहाँ रखता है जो तू उसकी हेल्प करेगी? सुमन जी की बातों को सुनकर परी अपने दांत दिखाते हुए बोलती है, अरे मॉम, मैं तो वहाँ रूही से साथ इसलिए जा रही हूँ कि रूही को अकेला फील ना हो। इतना बोल वे रूही का हाथ पकड़ किचन में चली जाती है। वहीं परी को जाता देख अर्जुन भी उन दोनों के पीछे भाग जाता है, क्योंकि उसे भी जानना था कि उसके शैतान भाई ने ऐसा क्या किया कि रूही इतनी जल्दी विला वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ अनाथाश्रम में देवांश की कार अनाथाश्रम के बाहर रुकती है, जिसे देख दिशा देवांश को थैंक यू बोल कार के बाहर निकल जाती है। वहीं देवांश, जिसने बहुत ही मुश्किल से दिशा को मनाकर अपनी कार में बांटने के लिए राजी किया था, वे दिशा को कार से निकलता देख खुद भी कार से निकल जाता है और दिशा को रोकते हुए कहता है, मिस दिशा, आप परेशान मत होइए, भाई के साथ रूही खुश रहेगी। देवांश की बात सुनकर दिशा बोली, सर, वे आपके भाई हैं इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, पर मुझे पता है रूही आपके भाई के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी। कहाँ मेरी मासूम की रूही और कहाँ आपके खतरनाक भाई? इतना बोल वे एक नज़र देवांश को देख वहाँ से चली जाती है। वहीं देवांश दिशा की बात सुनकर मुस्कुराता है और वे भी अपनी कार में बैठ सिंगानिया विला के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंगानिया विला में रूही किचन में गाजर का हलवा बना रही थी। वहीं अर्जुन और परी वहाँ पर बैठे बैठे रूही का दिमाग खा रहे थे। तभी अर्जुन बोला, रूही बताना, मेरे शैतान भाई ने तुझे धमकी दी है ना, तभी तो तू उनके साथ आई, क्योंकि उसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं। अर्जुन की बात काटते हुए परी बोली, अरे यार रूही, तू उसकी बातों पर ध्यान ना दे, तू बताना कि भाई ने ऐसा क्या कहा कि तू तुरंत वापस आ गई, कहीं भाई ने तुझे किस तो नहीं कर लिया जिसके तू भाई के प्यार में पिघल कर यहाँ पर वापस आ गई। अर्जुन और परी की बात सुनकर रूही के हाथ काम करते करते रुक जाते हैं और उसे रुद्र का किस करना और उसका धमकी देना याद आ जाता है, जिसे याद कर रूही परी पर गुस्सा करते हुए बोली, परी तू चुप हो जा और अपनी फालतू की बकवास बंद कर, मुझे तेरे उस शैतान भाई से प्यार कभी भी नहीं हो सकता। अरे प्यार तो छोड़ो, मुझे तो उनका चेहरा देखना भी नहीं पसंद, अरे देखने में ही डरावने लगते हैं, तो कोई प्यार कैसे करेगा उनसे। रूही अपनी ही धुन में ये सब बोले जा रही थी, लेकिन इस बात के अनजान की कोई गुस्से में उसे घूर रहा है। वहीं परी और अर्जुन, जो रूही को रुद्र की बुराई करता हुआ देख उसकी बातों को खूब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज के पहले इस तरह से रुद्र की बुराई किसी ने भी नहीं की, इसलिए वे रूही की बातों को सुन मुस्कुरा रहे थे। मगर जैसे ही उनकी नजर दरवाजे पर खड़े रुद्र पर जाती है, उनकी हंसी एक पल में ही गायब हो जाती है और उनका चेहरा लगभग रोने जैसा हो जाता है। तभी उनकी नजर रूही पर पड़ती है, जो अब भी किसी रेडियो टैप की तरह रुद्र की बुराई किए जा रही थी, जिसे देख वे दोनों रूही को दया भरी नजरों से देख रुद्र की तरफ देख अपने चेहरे पर बड़ी की मुस्कान लिए चुपचाप रुद्र के साइड से निकल जाते हैं। किचन के निकलते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनके शरीर में किसी ने दोबारा जान भर दी हो, वरना रुद्र को किचन में देख उनकी आधी जान तो निकल ही गई थी। परी अर्जुन को देख कहती है, अब हमारा शैतान भाई रूही के साथ क्या करेगा, मुझे उसके लिए काफी दुख हो रहा है। परी की बात सुनकर अर्जुन बोला, तू वे सब छोड़, पहले ये सोच कि हमारी जान बच गई, वरना भाई तो शायद रूही को छोड़ भी दे, पर वे हमें नहीं छोड़ते। अच्छा हुआ कि हमारे शैतान भाई ने हमें छोड़ दिया, अब चल, वरना भाई ने देख लिया ना तो तू लेना उनकी सजा। अर्जुन की बात सुनकर परी बोली, नहीं नहीं, मुझे भाई की कोई भी सजा नहीं लेनी, मैं भी चलती हूँ। इतना बोल परी और अर्जुन दोनों वहां से निकल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ किचन में रूही इस बात के अनजान कि परी और अर्जुन दोनों ही उसे बीच में अकेला अपने शैतान भाई के साथ छोड़कर चले गए हैं। रूही परी से बोली, परी मैं तुझे लास्ट बार बोल रही हूँ, उस डरावनी नीली आंखों वाले शैतान की बात अब मुझसे दोबारा मत करना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रूही ने इतना बोला ही था कि उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर वे डर जाती है, और जैसे ही पलटने को होती है वैसे ही रुद्र अपनी पकड़ और मजबूत करके हुए रूही की पीठ को अपने सीने से लगा, उसके कान को अपने होंठों से छूते हुए बोला, रू क्या बोल रही थी अभी अभी तुम?
रूही जैसे ही रुद्र की बातें सुनती है और उसकी छुअन अपने कानों पर महसूस करती है, वैसे ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके चेहरे पर डर नजर आने लगता है।